अर्पा रेडियो पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
दोस्तों नमस्कार, सुस्वागतम आप सबका रेडियो प्लेबैक इंडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में। दोस्तों आज के इस ग्रैंड एपिसोड में हम और आप मिलकर जीने वाले हैं संगीत की देवी शुभा मुद्गल जी के अद्भुत और दिव्य संगीत की आभा को। तो दोस्तों स्वागत करें पद्मश्री शुभा मुद्गल जी का। शुभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सजीव जी आपको और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आपको धन्यवाद जो आपने मुझे ये अवसर दिया कि आपके सब श्रोताओं से मैं आपके जरिए कुछ बात कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा नाम केवल शुभा मुद्गल है, पद्मश्री का सम्मान मुझे सरकार ने 2000 में दिया। नियम के अनुसार हमारे नाम के पहले प्रीफिक्स की तरह पद्मश्री नहीं लगाया जा सकता, तो आप मुझे केवल शुभा कहें, शुभा मुद्गल कहें।
जी शुभाजी मैं ख्याल रखूंगा, बस आपके इंट्रोडक्शन के लिए मैंने उसे इस्तेमाल किया था। तो शुभाजी सवालों और जवाबों के सिलसिले तो चलते ही रहेंगे, पर आज के इस विशेष एपिसोड में हम बस आपके गाए हुए गीतों पर चर्चा करेंगे। तो शुभाजी कार्यक्रम का शुभारंभ अगर आपकी गायकी से ही हो तो समा बन जाएगा। प्लीज कुछ अपने खास अंदाज में कोई ठुमरी या कोई ख्याल सुना दीजिए।
सजीव जी बारिश का मौसम है और मेरी पैदाइश और परवरिश इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद में, बनारस में, मिर्ज़ापुर में बारिश के समय में कजरी, झूला आदि गाने की परंपरा पुरानी रही है। तो एक पारंपरिक कजरी जो असल में मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी, उसकी कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बड़ी प्यारी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसका एक अपना अद्भुत मज़ा है, लुत्फ है। तो एक छोटी सी कजरी का एक अंश आपको सुनाती हूँ। घटा घेर घेर बरसे बदरियाना, घटा घेर घेर बरसे बदरियाना, घटा घेर घन घोर, घटा घेर घन घोर, बिजुरी चमके चारों ओर, पानी बरसे उड़ सावन की फुहरियाना, पानी बरसे उड़ सावन की फुहरियाना, घटा घेर घेर बरसे बदरियाना।
वाह अद्भुत अद्भुत, कमाल शिवाजी कमाल। क्या इससे बेहतर कोई शुरुआत हो सकती है हमारे आज के इस विशेष एपिसोड की? नहीं ना, बहुत बहुत आभार शिवाजी। अच्छा एक बात जो मैं जानना चाहूंगा, हालांकि बहुत कम उम्र में ही अपने लिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक खास मुकाम बना लिया था, पर जहां तक मेरी जानकारी है कि आपके परिवार में शायद कोई संगीत से इस हद तक जुड़े हुए नहीं थे, तो फिर ये शास्त्रीय संगीत में आपकी दिलचस्पी आखिर कहां से जन्मी और किसने आपके टैलेंट को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया? मतलब वो कौन थे जिन्होंने हमें शुभा मुद्गल जैसी गायिका दी?
ये सत्य है कि मेरे परिवार में कोई भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं था। मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक थे, लेकिन दोनों को संगीत से बेहद प्रेम था और न केवल संगीत से लेकिन कला से बहुत बहुत आस्था थी उनकी। और घर में ऐसा माहौल था कि गाना सुनना, गाने पर चर्चा करना, थिएटर पे बातचीत करना, साहित्य पर बातचीत करना, ये आम चर्चा होती रहती थी। और मुझे और मेरी जो छोटी बहन है रागिनी, हम दो बहनें हैं, माँ और पिताजी प्रोत्साहित करते थे कि हम हो सके तो कला से जुड़ें, गायन सीखें, नृत्य सीखें, स्कूल में थिएटर में भाग लें। इसलिए कभी भी ये किसी ने हमें रोका नहीं। माँ और पिताजी ने हर तरह से हम दोनों को प्रोत्साहित किया, गाना सिखवाया, हमें कार्यक्रमों को उनके लिए ले जाते थे श्रोता के रूप में, और घर वापस आकर खूब चर्चा भी होती थी, फिल्मों पर भी चर्चा होती थी। हर प्रकार का संगीत, हर प्रकार की कलाओं से हम लोग जुड़े। मैंने गाना सीखना शुरू किया, इसका श्रेय मेरे पिताजी और माँ को जाएगा। और उन्होंने अपना समय निकाल कर, वो मुझे गुरुजी के पास तालीम के लिए लेके जाते थे, रोज़ कहते थे कि नहीं और रियाज करो, और कभी कोई डिमांड नहीं थी उनकी तरफ से कि भाई कब तुम मंच पर गाने लगोगे। वो हमेशा ये कहते थे कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम सीखोगे, लेकिन कभी उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि मैं बहुत बड़ी कलाकार बन जाऊंगी। और फिर तो गुरुजनों की कृपा रही, पंडित रामाश्रय झा जी जैसे बड़े विद्वान कलाकार, उन्होंने मुझे शिष्या के रूप में स्वीकार किया इलाहाबाद में ही। तो उनसे मैं सीखती रही लगभग 30-35 वर्ष।
जी शुभा जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके माता पिता को नमन, और उन्होंने वाकई आपको जिस तरह से प्रोत्साहित किया, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में हर माता पिता अपने बच्चों को कला के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कला से जुड़े रहने से आप बड़े कलाकार बने या ना बने, कम से कम एक अच्छे इंसान आप जरूर बन सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा शुभा जी, एक ऐसे दौर में जब शास्त्रीय संगीत से जुड़े अधिकतर फनकार जो है वो कमर्शियल और लोकप्रिय संगीत के प्रति एक बहुत उदासीन सा रवैया अपनाते थे, आपने इस दूरी को पाटने की पहल की अली मोरे अंगना के साथ, तो ये शुरुआत कैसे हुई, ये थोड़ा सा बताइए।
सजीव जी, अली मोरे अंगना के विषय में मैं बात करूं, उससे पहले आपको याद दिला दूं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनगिनत कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मी संगीत में जिनकी दखल रही। बल्कि यदि आप फिल्मी संगीत का इतिहास यदि देखें तो उसमें शुरुआती दौर में तो इतने सारे कलाकार शास्त्रीय संगीत के फिल्मी संगीत से जुड़े जो कि कमर्शियल भी है और पॉपुलर भी है। मैं तो आपको याद दिलाऊंगी कि चाहे वो प्रोफेसर देवधर हों या उस्ताद विलायत खां साहब हों या पंडित रविशंकर जी हों या पंडित शिव कुमार शर्मा जी हों या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों और अन्य कितने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, बेगम परवीन सुल्ताना जी हों या श्रीमती किशोरिया मुनकर जी हों, सब ने कभी ना कभी फिल्मी संगीत के साथ नाता जोड़ा और कुछ कुछ का नाता तो कई वर्षों तक और कई दशकों तक चलता रहा। एक तरफ तो रागदारी संगीत भी उनका चलता रहता है, दूसरी तरफ स्टूडियो सेशंस भी वो बजाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मैंने कोई नई चीज़ नहीं की। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वादकों के मुकाबले गायक गायिकाओं का फिल्मी संगीत और पॉपुलर संगीत के साथ नाता कम रहा है या कंपोजर्स का रहा है। मुझे अली मोरे अंगना एल्बम में गाने के लिए निमंत्रण आया। जवाहर वातल दिल्ली के ही एक कंपोज़र हैं जिन्होंने कई सारे पॉपुलर एल्बम तैयार किए उस दौर का, जो इंडी पॉप का दौर था। मैं उनके स्टूडियो पर कुछ शास्त्रीय संगीत रिकॉर्ड करने गई थी, उसी समय उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं एक पॉपुलर संगीत का एल्बम उनके साथ करूँ। मुझे इसकी ना तो आदत थी मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग करने की, ना ही मुझे कुछ जानकारी ज़्यादा थी इस प्रकार के संगीत की, लेकिन मैंने कहा एक गीत करके देख लेते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है और मुझे भी ठीक लगता है तो फिर आगे काम कर लेंगे। तो इस तरह अली मोरे अंगना की शुरुआत हुई। कुछ लोगों को बेहद पसंद आया, कुछ लोगों को मैंने सुना है, लेकिन केवल इंटरव्यूज़ में ये बात होती है कि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि शास्त्रीय संगीत की एक विद्यार्थी कैसे शास्त्रीय संगीत के पथ से हटकर पॉपुलर संगीत की तरफ आ गई। और फिर मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि ये सारी जो कानाफूसी है ये सब केवल इंटरव्यूज़ में मुझे सुनाई देने को मिलती है, लेकिन कभी किसी कलाकार ने मुझे सामने, बड़े कलाकार ने मुझे सामने बुलाकर डांट के टपट के ये नहीं कहा कि भाई तुमने क्या कर दिया ये। तो मैंने प्रयास किया और जैसा कि होता है कुछ लोगों को पसंद आया, शायद कुछ लोगों को बिल्कुल ना पसंद आया हो।
जी, उनके बारे में तो हम नहीं जानते जिन्हें नहीं पसंद आया, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारे जितने श्रोता हैं उन सब के लिए तो वो एक बेहद फेवरेट गाना अभी भी है। थोड़ा सा सुना देंगे हमें?
यदि हो सके तो उसका आप ट्रैक ही बजा दें, क्योंकि उस मुझे पता नहीं कि मैं मुझे अनुमति है कि नहीं उस गीत को गाने की, तो आपको ये सुनकर अचरज तो ज़रूर होगा, लेकिन यदि आप वो ट्रैक ही बजा दें तो उसकी लाइसेंस आपके पास होगी मुझे लगता है, तो मेरे लिए ज़्यादा मतलब मामला सुलझ जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप वो ट्रैक बजा दें।
ओके शुभा जी, पता नहीं किस तरह के विवाद हमारे देश में हो जाते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। चलिए, मैं एक बात कन्फेस आपसे करना चाह रहा था। एक्चुअली मैं जिस दौर में ये गीत सुनता था उस वक्त मेरी एज करीब 25-26 रही होगी जब आपके ये गाने आते थे अली मोरे अंगना, और उसके बाद जब मैंने आपका अब के सावन सुना तो आप यकीन मानिए मैंने उससे पहले किसी फीमेल सिंगर को इतने हाई नोट्स पे इतने एक हार्ड रॉक काइंड ऑफ सॉन्ग गाते हुए नहीं सुना था। तो ये जो अब के सावन गीत है, ये आपके सभी गीत वैसे तो मेरे बहुत प्रिय हैं लेकिन अब के सावन स्टिल सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। तो ये गाना जो है, इसकी थोड़ी सी कहानी में बताइए कि ये गाना कैसे बना।
अब के सावन एल्बम जो बना था उसमें मैंने अपने दो बहुत प्रिय मित्रों के साथ काम किया, एक तो संगीत निर्देशक कंपोजर शांतनु मोहित्रा और दूसरे लिरिसिस्ट प्रसून जोशी। शांतनु उस समय दिल्ली में रहते थे, काम करते थे, और ऐसे ही किसी स्टूडियो में आते जाते हम लोगों की नमस्ते, हाय, हेलो कुछ चर्चा हो जाती थी। उसी दौरान शांतनु ने मुझसे कहा कि वो कुछ गीत बना रहे हैं आज के दौर के अंदाज के, उस समय के दौर के अंदाज के, और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूं। तो शांतनु एक दिन घर पे आए, गिटार लेके आए। उन्होंने कहा मैंने कुछ धुन तैयार की है लेकिन मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, क्या डालूं। तो उन्होंने अपना गिटार छेड़ा और कुछ ऐसी सी धुन मुझे सुनाई, डा रा 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 डा 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 डा, ऐसे ही डा 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 करके, और कहने लगे इस पे कुछ तुम डाल दो ना, कुछ भी शब्द डाल दो। तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया, पिया पिया बोले पपीहारे, ऐसे करके एक डेमो के तौर पे मैंने कुछ शब्द डाल दिए, तुकबंदी कर दी। उस गीत को तैयार करके शांतनु ने अलग अलग कंपनी से शायद बातचीत की, लेकिन शायद वो पहली कंपनी जिनसे उन्होंने बात की, वर्जिन रिकॉर्ड्स इंडिया, उनको वो गीत पसंद आया और उन्होंने कहा ठीक है हम पूरा एल्बम आपके साथ करेंगे। अब बात आई अब के सावन गीत की, तो इस एल्बम में जितने गीत थे उन पे खूब चर्चा होती थी, उनके बारे में शांतनु भी मुझसे बात करते थे, उनकी रिहर्सल होती थी, किस स्केल में गाना बनाया जाएगा, ये सब हमारी आपस में बातचीत होती रहती थी। और समय आ गया कि मैं उसकी एल्बम की डबिंग के लिए दिल्ली से मुंबई जाऊं। मुंबई में सब गीतों की डबिंग भी हो गई, लेकिन एक गीत ऐसा था जो मैंने ना तो सुना था ना जिसके बारे में शांतनु ना प्रसून कुछ चर्चा करते थे। फाइनली जब सारी डबिंग हो गई तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि भाई अब ये लास्ट गाना कब दोगे मुझे, मुझे तो इसका इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि स्केल में है, किस प्रकार का गीत है। तो मैंने देखा कि दोनों कुछ आपस में, उनकी निगाहें जो हैं कुछ आपस में कुछ बातचीत कर रही थी और कुछ कह रही थी एक दूसरे से, चेतावनी दे रही थी। और फिर बहुत झिझकते हुए शांतनु कहने लगे कि पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं शुभा, मैं कुछ अलग किस्म का गीत तुमसे गवाऊं। अलग किस्म का गीत क्या मतलब? मैंने कहने लगे कि जैसे गन्स एंड रोजेस का संगीत होता है। मुझे हंसी आने लगी, मैंने कहा अरे भाई सुना तो दो गीत फिर देखते हैं क्या होता है। गीत सुनाया प्रसून ने, मुझे लिरिक्स दिए, गीत बेहद पसंद आया मुझे, लेकिन मैं कह रही थी एक बार ट्राई कर लूँ इसको, देखती हूँ कहीं बहुत ऊंचा तो नहीं है मेरे लिए। हंसते हंसते खिलवाड़ में वो मैंने एक बार रिहर्सल की गीत की तो शांतनु कहने लगे नहीं हो गया, टेक हो गई, मुझे मिल गया जो मिलना था। तो मैं तो असल में एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग अनएडिटेड है उसमें मैं हंस भी रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है जब मैं गा रही हूँ, और रॉक म्यूजिक की बात की थी तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी, एक साड़ी पहनी हुई महिला, उससे कोई रॉक संगीत की कैसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है उससे। तो गीत तैयार हो गया। आज भी 99 में ये एल्बम लॉन्च हुआ था, लेकिन आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो शायद बच्चे रहे होंगे उस वक्त, वो भी मुझे जब सड़क पर मिलते हैं तो कहते हैं आप वही हैं ना जिन्होंने आप अब के सावन गाया। तो श्रेय तो असल में शांतनु और प्रसून को जाना चाहिए, लेकिन देखिए मेरे भाग्य देखिए कि मैं उस गीत से ऐसी जुड़ गई कि सब मुझे ही पहचानते हैं उस गीत के कारण।
शिभा जी ये तो आपका बड़प्पन है, वरना वाकई ऐसा गीत गा पाना किसी भी फीमेल सिंगर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और आपने देखिए हंसी हंसी में इतना आइकॉनिक गीत गा दिया, तो थोड़ा सा अब ये गीत तो हम सुनवाएंगे ही अपने श्रोताओं को, क्योंकि इसके बिना अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो सब नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये अगर हम आपकी आवाज में भी एक बार सुन ले तो सोने पे सुहागा हो जाए।
जरूर सुनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा दब के गाऊंगी क्योंकि नहीं तो पड़ोसी नाराज हो जाएंगे कि क्या हल्ला मचा रखा है। तो ये लीजिए, अब के सावन ऐसे बरसे, बह जाए रंग मेरी चुनर से, भीगे तन मन जिया न तर से, जम के बरसे जरा रुत सावन की, घटा सावन की, घटा सावन की, ऐसे जम के बरसे।
You can never
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर, और आज का ये एपिसोड कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है का 25वां सिल्वर जुबली एपिसोड है। आज हम भीग रहे हैं संगीत की बारिश में द वन एंड ओनली शुभा मुदगल जी के साथ। तो शुभा जी, एक और गीत की आपकी चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक सिंबॉलिक गीत था, एक महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात बहुत कम की जाती थी, ऐसे में आपका ये जो गीत था बहुत कुछ बयान करता था जो रिलीज हुआ था। और ये गीत आप समझ गए होंगे मन के मंजीरे की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इस गीत की मेकिंग के बारे में ही बताइए।
मन के मंजीरे एल्बम मेरे लिए बहुत स्पेशल था। इसका जो आइडिया था वो मल्लिका दत्त नाम की एक महिला हैं जो ह्यूमन राइट्स में काम करती हैं, और उनकी एक संस्था है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का प्रयास ये रहा है कि पॉपुलर कल्चर के द्वारा सोशल मैसेजिंग करें। अनेक उनके कैंपेन्स बने हैं लेकिन मन के मंजीरे उनका पहला कैंपेन था जिसमें उन्होंने पॉपुलर म्यूजिक द्वारा और म्यूजिक वीडियोज द्वारा कोशिश ये की कि महिलाओं के अधिकार, उनके ख्वाब, उनकी आकांक्षाएँ, उनकी उम्मीदें, उनके विषय में वो बात करें। कई सारी महिला कलाकार उन्होंने अपनी आवाज़ दी, उनमें से मैं एक थी, लेकिन मेरे साथ बहुत खूबसूरत जो कलाकार जिन्होंने इस एल्बम के लिए गाया, उनमें से एक तो महालक्ष्मी अय्यर, उन्होंने एक गीत गाया, एक अंतरा चौधरी ने एक बहुत सुंदर गीत गाया, रुपमा बाई जो राजस्थान की प्रतिष्ठित लोक गायिका थी उन्होंने गाया, दिवाली बेन भील जो गुजरात की बहुत प्रतिष्ठित गायिका, उन्होंने भी अपनी आवाज़ इस एल्बम के लिए दी। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इन खूबसूरत आवाज़ों के साथ मैं भी आवाज़ अपनी दे सकी इस एल्बम के लिए। मन के मंजीरे जो टाइटल ट्रैक है वो प्रसून ने लिखा, प्रसून जोशी जी ने, और शांतनु मोहित्रा ने इसका संगीत तैयार किया पूरे एल्बम का भी। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत स्पेशल गीत है इस एल्बम में वो है बाबुल, जो मैंने गाया। और इसलिए क्योंकि मल्लिका, शांतनु, प्रसून और मैं कई बार मिलते थे इस एल्बम की मेकिंग के दौरान और चर्चा करते थे कि अच्छा हम बात तो कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, लेकिन कौन सी महिला है ये शहरी भारतीय महिला है या फिर जो गांव में आज भी पानी भरने जाती है अपने सर पर घड़ा रख के, पता नहीं कितने कोस जाना पड़ता है उसको, उस महिला की बात कर रहे हैं हम। हमारी एक परवरिश हुई है वो बहुत अलग है उस महिला से जो भारत के किसी कोने में आज भी जिसका जीवन बहुत कष्ट वाला है। तो हम ये सारी चर्चाएं करते रहते थे और फिर एक बात हुई कि परंपरा से जुड़ा हुआ कुछ करें, तो इस सिलसिले में विवाह गीतों की बात हुई। मैंने कहा कि कई बार विवाह गीत प्रश्न उत्तर के रूप में होते हैं और मैंने एक गीत सुनाया, मेरे परिवार में गाया जाता है विवाह के अवसर पर, और वो ऐसा है कि जिसमें एक घर का बड़ा छोटी सी लड़की से पूछता है कि भाई तुम्हारे लिए कैसा वर ढूंढे। तो गीत कुछ इस प्रकार का था, अंबर बेल उदयपुर छाई जीराज, सात बरस की भई मेरी लाडो जीराज, हंसवा के बाबा ने गोद उठाई जीराज, कहो मेरी लाडो तुम कैसो वर ढूंढे जीराज, लंबो मत ढूंढो बाबा से मल तोड़े जीराज। ऐसे चलता रहता है कि लंबा वर मत ढूंढिए, गोरा वर मत ढूंढिए, इत्यादि इत्यादि, और वर ढूंढिए तो ऐसा जो गोकुल के कन्हैया जैसे हैं। ये इतना मास्टरपीस है प्रसून का कि मैं हर बार जब मिलती हूँ उनको तो इस गीत के लिए बधाई देती हूँ, और उस एल्बम का सबसे प्रिय मेरा गीत यही है मुझे लगता है।
बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए बाबुल छिया मोरा घबराए। छिया मोरा घबराए बिन बोले राना जाए, बिन बोले रहा ना जाए बाबुल जिया मोरा घबराए।
वाह, वाकई बहुत ही खूबसूरत गीत शुभा जी, बहुत ही खूबसूरत, और परसून इसके लिए यकीनन बधाई के पात्र हैं। शुभा जी, आपने एल्बम्स तो खूब सारी की और उन सभी में एक अलग बात आपने रखी, अलग अंदाज आपने रखा, साथ में आपने फिल्मों में भी जब भी वहाँ भी धूम मचा दी, जैसे लागा चुनरी में दा का टाइटल सॉन्ग हो या फिर रेनकोट के जो बेहतरीन गाने हैं वो हो, तो ये बताइए फिल्मी सफ़र आपका कैसा रहा, मतलब फिल्मों में गाना एल्बम्स वगैरह के गाने से आपको किस तरह डिफरेंट लगा?
फिल्मों के लिए मैंने ज़्यादा नहीं गाया है, ज़्यादातर जब गाया है तो बैकग्राउंड में चलने वाला कोई गीत गाया है। कई बार मुझे इंटरव्यूज के दौरान लोग पूछते हैं कि आप फिल्मों में ज़्यादा क्यों नहीं गाती हैं, और मैं हंस के कहती हूँ कि अगर मुझे अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी प्लेबैक के लिए तो हीरोइन को कई किलो अपने बढ़ाने पड़ेंगे। बात दरअसल ये है कि फिल्मों में मैंने बहुत कम गाया है, और तभी गाया है जब किसी को लगा कि मैं गीत सीख सकूं और मुझे कंफर्ट लेवल मिले कि मैं जाके उसको रिकॉर्ड करूं, क्योंकि फिल्म के लिए मैं जब गाते हैं तो एक सिचुएशन के लिए गाते हैं। एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था अक्स, राकेश मेहरा की, जिसमें अमिताभ बच्चन जी और मनोज वाजपेयी जी इनकी इन्होंने काम किया था, और उसके लिए मैंने एक गीत गाया था, अनु मलिक जी का म्यूज़िक था। उसमें मुझे याद है कि राकेश जी ने मुझे जो ब्रीफिंग दी थी गाने के लिए वो बहुत डिटेल्ड थी। उन्होंने पूरा मुझे समझाया कि आपका गीत फिल्म के इस समय पर आएगा, तो फिल्म के लिए मुझे लगता है कि संदर्भ कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और उसे समझे बगैर हम गीत अच्छा गा सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि सुर में हो, एक्सप्रेशन भी हो, लेकिन जब तक वो कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ ना समझ में आए शायद हम वो एक्सप्रेशन ना दे पाएं जो फिल्म के लिए आवश्यक है। और मुझे लगता है कि प्लेबैक के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो पात्र की गाने वाली आवाज़ बनकर कैसे उनकी बात कहते हैं, ये एक सीखने की चीज़ है। और मेरा स्पेशलाइजेशन इस चीज़ में नहीं है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ कुछ म्यूज़िक कंपोजर्स ने मेरे साथ काम किया और शायद प्लेबैक तो नहीं करवाया मुझसे, लेकिन हाँ रेनकोट के गीत हों या और अन्य कोई गीत हों उसमें बैकग्राउंड में वो गीत चले और उनका असर अच्छा हुआ। एक और फिल्म बनी थी चांदनी बार, जिसमें तब्बू जी ने एक्टिंग की थी, और उसके लिए राजू सिंह ने मुझसे गवाया था, केवल आलाप थे मेरे, लेकिन उन्होंने भी जब मुझे कॉन्टेक्स्ट समझाया और बताया कि मेन मुख्य पात्र के लिए कि जीवन में क्या हो रहा है, उनकी क्या क्या उतार चढ़ाव, क्या ज्वार भाटा चल रहा है उनकी उनके जीवन में, उसके अंदाज से मैंने आलाप गाया। फिल्म संगीत में यद्यपि मेरा जुड़ना बहुत कम हुआ है, फिर भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, और ये भी समझ में आया कि कितना कठिन काम है प्लेबैक करना और मुझे कितना सीखना है इस विषय में।
अच्छा, आने वाले समय में हम आपको किन प्रोजेक्ट्स में सुनने जा रहे हैं, मतलब आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्दी ही आने वाले हैं?
सजीव जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुझे अलग अलग किस्म के लोगों के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, और कई बार युवा कलाकारों के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरा एक गीत जो मैंने स्वयं लिखा है और कंपोज किया है बेताबियां, वो मैंने दिल्ली के एक यंग कलाकारों के बैंड के साथ रिकॉर्ड किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही आपके साथ शेयर कर पाऊँगी मैं वो। बैंड का नाम है फज कल्चर, और इसमें तीन सदस्य हैं, एक हैं सृजन महाजन जो ड्रमर हैं, एक हैं निखिल मलिक गिटारिस्ट, और एक हैं अर्ष शर्मा, वो गाते भी हैं, गिटार भी बजाते हैं, और मेरा साथ दिया है इन तीन युवा कलाकारों ने। बहुत प्यार से और बहुत आनंद के साथ उन्होंने ये गीत मेरे साथ रिकॉर्ड किया है। और कुछ ही दिनों में मेरा एक और गीत जो मैंने पाकिस्तानी बैंड मिजमार के साथ रिकॉर्ड किया है जोगी, वो भी आने वाला है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके श्रोता और आप मुझे शुभेच्छा भी देंगे इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, और सुनकर ये भी बताएंगे कि पसंद आया कि नहीं।
जी शुभा जी, एक्चुअली ये आपका जो कार्यक्रम हमने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था कि 25वां एपिसोड जो है वो आपके साथ होने वाला है, तो हमने अपने श्रोताओं से भी कहा था कि अगर कोई सवाल है तो वो भेज सकते हैं, तो हमें ढेरों सवाल प्राप्त हुए हैं। तो ये मैंने सवाल लिया है पूजा अनिल जी का जो स्पेन में रहती हैं, और उन्होंने ये जानना चाहा है कि फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी में जो आपका गाना था बावरा मन देखने चला एक सपना, तो क्या स्वानंद का जो वर्जन है वो आपसे पहले रिकॉर्ड हो चुका था? अगर हुआ था तो क्या आपको वो सुनवाया गया था? ये जानना चाह रही हैं, और थोड़ा सा इनके इस सवाल का भी आप जवाब देते चलें।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए मैं केवल एक गीत रिकॉर्ड करने के लिए गई थी, और वो शांतनु ने मुझे कहा था कि टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड करना है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो शांतनु ने कहा कि दो तीन लाइन हैं जो जरा गुनगुनानी हैं, लेकिन हमारी जो एक्ट्रेस हैं वो गाने से जरा कतरा रही हैं, तो तुम अपनी आवाज़ में ये दो तीन लाइन हैं उनको रिकॉर्ड कर दो। तो उसमें ज़्यादा म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं गया, जैसे कमरे में घूमते घूमते कोई गाता है ना, तो बावरा मन उन्होंने मुझे दिया गाने के लिए, और केवल एक ही दो पंक्ति थी उस समय। ये पूरा गीत बनेगा ये भी मुझे नहीं पता था, और गीत किसी और की आवाज़ में स्वानंद जी की आवाज़ में रिकॉर्ड होगा ये भी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने केवल शांतनु के कहने पे वो कुछ पंक्तियाँ जो मुख्य पात्र थी चित्रांगदा जी उस फिल्म में, उनके लिए मैंने वो रिकॉर्ड किया था, और गीत के रूप में वो नहीं रिकॉर्ड किया था। शायद पूरा गीत स्वानंद जी की आवाज़ में बाद में रिकॉर्ड हुआ।
ओके शुभा जी, मुझे लगता है कि पूजा जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे इस एपिसोड को इतना खास आपने बना दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेषित कर रहा हूँ। जाते जाते एक फरमाइश और मैं करना चाहूँगा, हमारे एक और श्रोता हैं रितेश खरे मध्य प्रदेश से, जो सीखो ना नैनो की भाषा पिया वो सुनना चाहते हैं, तो आप जाते जाते बस ये गीत हमें एक बार सुनवा दें, और इसी गीत पर हम अपने श्रोताओं से विदा भी लेते हैं।
आपका और सभी श्रोताओं का पुनः धन्यवाद, आपने मेरे साथ इतना समय बिताया, मेरी जो कहानियां हैं वो सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए सीखो ना की कुछ पंक्तियां।
सीखो ना नैनो की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ, सीखो ना पिया, लब तो ना खोलूंगी मैं समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनो की भाषा पिया।
बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
थैंक यू शुभा जी। तो ये थी दोस्तों द वन एंड ओनली शुभा मुदगल जी हमारे साथ एक मुलाकात जरूरी है कार्यक्रम के 25वें एपिसोड में। किसी और नए कलाकार को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।
लव तो ना खोलूंगी मैं समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनो की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ, सीखो ना लव तो ना